जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सत ब्रह्म की भावना करो, जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे ही यह जीव भावना करके चिदघन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। जो अनात्मा की भावना करता है तो पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्मा की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इससे आत्म भावना करो हे राम जी। जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वह थोड़े काल तक रहती है और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। यह दृश्य आत्मा में भ्रम से सिद्ध है। जैसे मृग तृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से सिद्ध है, वास्तव नहीं, वैसे ही अहंकार देह इंद्रियों से जो सुख प्रतीत होता है सो सब मिथ्या ही है। इससे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित रहो। जब आत्मा में स्थित होगे तब मोह को ना प्राप्त होगे। जैसे पारस के स्पर्श से सुवर्ण हुआ तांबा फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही तुम भी जब आत्मपद को जानोगे तब फिर इस मोह को ना प्राप्त होगे कि मैं हूं, यह मेरा है, अहम त्वम भाव तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा और ये भावना भी नहीं रहेगी।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह तुमसे मैंने क्रम कहा है सो वह सब जीवों को समान है, इससे जो विशेष है वह तुम सुनो। इस जगत के आरंभ में जो देहधारी जीव हैं उन जीवों का आत्म प्रकाश से मोक्ष होता है। एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जावे और वह उपदेश करे तो उस उपदेश के धारण से शने शने एक जन्म से अथवा अनेक जन्मों से सिद्धता प्राप्त होती है। और दूसरा क्रम यही है जो अपने आप से वह उत्पन्न होती है, अर्थात समझ लेता है। जैसे वृक्ष से फल गिरे और किसी को आप प्राप्त हो तैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसी पर पूर्व का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ सो तुम सुनो। वह महापुरुषों का वृतांत है, शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हुए हैं और अकस्मात फल जिनको प्राप्त हुआ है उनका निर्मल क्रम सुनो। हे राम जी, जिसकी सब संपदा उदय हुई थी और सब आपदा नष्ट हुई थी, ऐसा एक उदार बुद्धि विदेह नगर का राजा जनक हुआ है। वह बड़ा धैर्यवान था। अर्थी का अर्थ कल्प वृक्ष की नाई पूर्ण करे, मित्र रूपी कमलों को सूर्यवत प्रफुल्लित करे, बांधव रूपी पुष्पों का वसंत ऋतुवत और स्त्रियों को काम देववत था। ब्रह्म रूपी चंद्रमुखी कमल का वह शीतल चंद्रमा था। दुष्ट रूपी तम का नाशकर्ता सूर्य था और स्वजन रूपी रत्नों का समुद्र पृथ्वी में मानो विष्णु सूर्य स्थित हुआ था। ऐसा राजा जनक एक समय लीला करके अपने बाग में, जिसमें मीठे फल लगे थे और नाना प्रकार के सुंदर बेलों पर कोकिला शब्द करती थी, इस भांति गया जैसे नंदन वन में इंद्र प्रवेश करे। उस सुंदर वन में पुष्पों से सुगंध फैल रही थी। राजा अपने संग के अनुचरों को दूर त्याग कर आप अकेला कुंजों में विचरने लगा था। शालमली नामक एक वृक्ष था, उसके नीचे राजा ने शब्द सुना कि अदृश्य सिद्ध जो विरक्त चित्त और नित्य पर्वतों में विचरने वाले हैं आत्मगीता का उच्चारण करते हैं, जिससे आत्मबोध प्राप्त होता है। उस गीता को राजा ने सुना कि पहला सिद्ध बोला, यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से यह तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। तीसरा सिद्ध बोला, जो निराभास और निर्मल है, जिसमें मन का अभाव है अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। चौथा सिद्ध बोला कि जो दृष्टा दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति दोनों पक्षों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और सूर्य आदि को भी प्रकाशता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। पंचम सिद्ध बोला कि जो ईश्वर साकार और हाकार है, अर्थात साकार जिसके आदि में है और हाकार जिसके अंत में है, सो अंत से रहित आनंद अनंत शिव परमात्मा सर्व जीवों के हृदय में स्थित है और निरंतर जो अहम रूप होकर उच्चार होता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। छठा सिद्ध बोला कि हृदय में स्थित जो ईश्वर है, उसको त्याग कर जो और देव के पाने का यत्न करते हैं, वो पुरुष कौस्तुभ मणि को त्याग कर और रत्नों की वांछा करते हैं। सातवां सिद्ध बोला कि जो सब आशा त्यागता है, उसको फल प्राप्त होता है और आशा रूपी विष की बेल वह मूल संयुक्त नष्ट हो जाती हैं, अर्थात जन्म मरण आदि दुख नष्ट हो जाते हैं, फिर नहीं उपजते हैं। जो पदार्थों को अत्यंत विरस रूप जानता है और फिर उनमें आशा बांधता है। वह दुर्बुद्धि गर्दभ है, मनुष्य नहीं। जहाँ जहाँ विषयों की ओर दृष्टि उठती है उनको विवेक से नष्ट करो। जैसे इंद्र ने व्रज से पर्वतों को नष्ट किया था, जब इस प्रकार शुद्ध आचरण करोगे तब समभाव को प्राप्त होंगे और उससे आत्मपद को प्राप्त होकर अक्षय अविनाशी पद पाओगे। हे राम जी, महीपति इस प्रकार सिद्धों की गीता सुनकर जैसे संग्राम में कायर विषाद को प्राप्त होता है तैसे ही विषाद को प्राप्त हुआ और सेना संयुक्त अपने गृह में आया। नौकर और सब लोग किनारे खड़े रहे और राजा उनको छोड़कर चौखंडे पर गया और झरोखे में संसार की चंचल गति को इधर उधर देखकर विलाप करने लगा कि बड़ा कष्ट है कि मैं भी संसार में लोगों की चंचल दशा से आस्था बांध रहा हूँ। ये तो सब जीव जड़ रूप है, चैतन्य कोई नहीं। जैसे और जीव पाषाण रूप हैं, तैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूँ। काल अंत से रहित अनंत है और उसके कुछ अंश में मेरा जीना है। इसी जीने में मैं आस्था कर रहा हूँ। मुझको धिक्कार है कि मैं अधम चेतन हूँ। ये मेरे मंत्री और राज्य और खजाना सब क्षणभंगुर हैं। ये जो सुख हैं वे दुख रूप हैं। इनसे रहित मैं किस प्रकार स्थित हूँ? जैसे महापुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं, जीवन आदि अंत में तुच्छ रूप हैं और मध्य में पैलव रूप हैं। उनमें मैंने क्या मिथ्या आस्था बांधी है? जैसे बालक चित्र के चंद्रमा को देख चंद्रमा मानकर आस्था बांधे, यह प्रपंच रचना इंद्रजाल की बाजीवत है। बड़ा कष्ट है इसमें कि मैं क्यों मोहित हुआ हूँ। जो वस्तु उचित रमणीय उदार और अकृत्रिम है वह इस संसार में रंचक भी नहीं। मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई है? यदि पदार्थ दूर हो और उसके पाने का मेरे मन में यत्न हो तो वह प्राप्त हो ही जावेगा। यह निश्चय करो अथवा अर्थाकार जो संसार के पदार्थ हैं उनकी आस्था मैं त्यागता हूँ। ये लोग सब आगमा अपाई हैं, अर्थात उदय होते और मिट जाते हैं और जल के तरंगों के सदृश सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं। जितने सुख दृष्टि आते हैं वे दुख से मिश्रित हैं। उनमें मैंने क्या आस्था बांधी है? सुख कदाचित दिन पक्ष मास वर्ष आदि में आते हैं और दुख बारंबार आते हैं। मैं किस सुख से जीने की आस्था बांधूं? जो बड़े बड़े हुए हैं वे सब नष्ट हो गए हैं और स्थिर कोई ना रहेगा। मैं बारंबार विचार कर देखता हूँ, इससे मैं जाना कि इस जगत में सत्य पदार्थ कोई नहीं, सब नाश रूप हैं। ऐसा कौन पदार्थ है कि जिसमें आस्था बांधे? जो अब बड़े ऐश्वर्यवान विराजते हैं सो कुछ दिन पीछे नीचे गिर पड़ेंगे। हे चित्त, बड़ा खेद है, तूने किस बड़ाई में आस्था बांधी है और मैं किस में बंधा हुआ कलंकित हुआ हूँ। ऊंचे पद में स्थिर होके भी मैं अधह को गिरा हुआ हूँ। बड़ा कष्ट है कि मैं आत्मा और नाश को प्राप्त होता हूँ, किस कारण अकस्मात मुझको मोह आया है और मेरी बुद्धि को इसने उपहत किया है। जैसे सूर्य के आगे मेघ आता है और सूर्य नहीं भासता, तैसे ही मुझे आत्मा नहीं भासता। भोगों से मेरा क्या है और बांधवों से मेरा क्या है, इनमें मैं क्यों मोहित हुआ हूँ। देह अभिमान से जीव आप ही बंधायमान होता है। देह में अहंकार ही जरा मरणादिक विचारों का कारण होता है। इससे इनमें मेरा क्या प्रयोजन है, इन अर्थों में क्या बड़ाई है और राज्य में मैं क्यों धैर्य करके बैठा हूँ। ये सब पदार्थ क्षोभ के कारण हैं और ज्यों के त्यों रहते हैं। इनमें ना मुझको ममता है ना संग है, ये सर्व असत्य रूप हैं। संसार के सुख विष रूप हैं और इनमें आस्था करनी मिथ्या है। जो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और पराक्रमी गुणवान हुए हैं, वे सब परिवार संयुक्त मर गए हैं, तो वर्तमान में क्या धैर्य करना है। कहाँ वह धन और राज और कहाँ उस ब्रह्मा का जगत। कई पुरुषों की पंक्ति बीत गई है, हमको उनसे क्या विश्वास है। देवताओं के नायक अनेक इंद्र नष्ट हो गए, जैसे जल में बुदबुदे उपजकर नष्ट हो जाते हैं, तो मैं क्या इस संसार में आस्था बांधकर जीऊंगा। संतजन मुझको हंसेंगे, कई ब्रह्मा हो गए हैं, कई पर्वत हो गए हैं और कई धूल की कणिकावत राजा हो गए हैं, तो मुझको इस जीने में क्या धैर्य है। संसार रूपी रात्रि में देह रूपी शून्य दृष्टि स्वप्ना है। उस ब्रह्म रूप में जो मैंने आस्था बांधी है, इससे मुझको धिक्कार है। यह वह और मैं इत्यादिक भ्रम आत्मा में मिथ्या कल्पना उठी है और अज्ञानियों की नाई मैं स्थित हुआ हूँ। अहंकार रूपी पिशाच करके क्षण क्षण में आयु व्यतीत होती है, देखते हुए भी नहीं दिखती। काल की सूक्ष्म गति है जो सबको चरण के नीचे धरे हैं। सदाशिव और विष्णु को जिसने खेलने का गेंद किया है और वह सबको भोजन करता है, इससे मुझको जीने में क्या आस्था बांधनी है। जितने पदार्थ हैं वे निरंतर नाश होते हैं, कोई दिन में, कोई पक्ष में और कोई वर्ष में नष्ट हो जाता है। जो अविनाशी वस्तु है वह अब तक नहीं देखी, वर्षों व्यतीत हो गए हैं। जीवों की चित्त रूपी नदी में भोगों की तृष्णा रूपी तरंग उछलती हैं, शांत कदाचित नहीं होता। जैसे वायु से नदी में तरंग उछलती हैं और सोमता से रहित हो जाते हैं। जिनको चित्त में भोगों की अभिलाषा है, उनको अतुच्छ पद दृष्टि नहीं आता और वे कष्ट से कष्ट को प्राप्त होते हैं और उन्हें दुख से दुखांतर प्राप्त होता है। अब तक मैं विरक्त नहीं हुआ हूँ, इससे मुझको धिक्कार है। जिसका अंतःकरण नीच है और उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जान के आस्था बांधी है, वह नष्ट होती दिखती है। यह शरीर अस्थि मान से बना है और आदि अंत संयुक्त इसका आकार है। मध्य में कुछ रमणीय भासता है, परंतु सब अपवित्र पदार्थों से रचा विनाश रूप है। स्पर्श करने के भी योग्य नहीं, उससे मुझको क्या प्रयोजन है। हरि ओ हरि ओम। हरि ही ओ ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।